हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया था। शाम को संगीत और मेहंदी का फंक्शन था। एक तरफ जहां अमृता को मेहंदी लगाई जानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ संगीत का भी आयोजन किया गया था। सब लोग तैयारी में लगे हुए थे और अमृता घोड़े बेचकर सो रही थी। उसको वैसे भी कुछ नहीं करना था। हॉल में बैठी अरुणिमा और भूमि के हाथों में सूखी हुई मेहंदी थी, जिसमें वो गुलाब जल डालकर मेहंदी का घोल बना रही थी। भूमि ने अपना कटोरा अरुणिमा की तरफ करते हुए कहा, आंटी जी देखिए, इतना ठीक है ना? हाँ, इतना ठीक है। अब इसे इस मेहंदी के कोन में भरकर थाली में सजा दो। अरुणिमा के कहने पर भूमि हाँ में सर हिलाती है और मेहंदी के घोल को कोन में भरने लगती है। अरुणिमा देखती है भूमि का पूरा हाथ मेहंदी से भर गया है। ये देखकर अरुणिमा हंसते हुए कहती है, अरे भूमि, तुम्हारे हाथ तो अभी से लाल हो गए हैं, अब शाम को मेहंदी के फंक्शन में मेहंदी कैसे लगाओगी? भूमि ने अपने मेहंदी वाले हाथों को देखा। सच में उसके हाथ में जगह जगह पर मेहंदी लगी हुई थी। भूमि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे भी अच्छे लग रहे हैं। अरुणिमा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि आज शाम को तुम्हारे हाथों पर मैं अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगी और तुम्हारे हाथों पर अपने बेटे का नाम लिखूंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ तो पहले से ही मेहंदी से भर गए हैं, अब मैं इस पर अपने बेटे का नाम कैसे लिखूं? भूमि का चेहरा हल्के शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा नीचे करते हुए कहती है, और कोई बात नहीं आंटी जी, आप दूसरे हाथ पर लिख लीजिए। अरुणिमा ने एक मेहंदी का कोन उठाया और भूमि के मेहंदी लगे हाथों को अपनी तरफ करते हुए कहा, नहीं, मैं तो इसी पर लिखूंगी। अरुणिमा ने देखा कि भूमि के हाथों पर जगह जगह मेहंदी के छोटे छोटे बिंदे बने हुए थे। अरुणिमा ने उन दो चार बूंदों को एक साथ जोड़कर एक सुंदर से फूल का डिजाइन बना दिया और उसके बीच में ए अल्फाबेट लिख दिया। भूमि ने अपने हाथों की हथेलियों के पास उसने एक छोटे से फूल के डिजाइन के अंदर ए अल्फाबेट देखा। वो हैरानी से अरुणिमा को देखती है, तो अरुणिमा मुस्कुराते हुए भूमि के हाथों को देखते हुए कहती है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना तुम्हारे हाथों में ये नाम। अरुणिमा के कहने पर भूमि कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ए से तो दोनों का ही नाम आता है, तो वो इसमें से कैसे पहचानेगी कि अरुणिमा ने उसके हाथों पर आकाश का नाम लिखा है या अनंत का। लेकिन अरुणिमा के चेहरे की खुशी देखकर भूमि में हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अरुणिमा से ये पूछ सके। अरुणिमा भूमि से कुछ कहती इससे पहले ही सीढ़ियों के पास से आस्तिक की आवाज आती है, अरुणिमा ये कैटरिंग के बिल कहाँ रखे हुए हैं? बिल तो अनंत के पास है, वही गया था ना केटरिंग का ऑर्डर बुक करने के लिए, तो उसे ही पता होगा बिल कहाँ रखे हुए हैं, अरुणिमा ने कहा। तो अरुणिमा को देखते हुए आस्तिक ने कहा, तुम्हारे बेटे के भरोसे अगर काम छोड़ दिया ना तो हो गए सारे काम। एक तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि हल्दी के बाद से ये लड़का गायब कहाँ है। अरुणिमा अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, वो जाह्नवी के साथ मार्केट गया हुआ है, फ्री नहीं है मेरा बेटा, काम कर रहा, और तुम्हें इतना भड़काने की जरूरत नहीं है। चलो, तुम्हें बिल ही चाहिए ना, मैं दे देती हूँ, अनंत के कमरे में ही रखा होगा कहीं। कहते हुए अरुणिमा आस्तिक के पास आती है और सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाली होती है कि अरुणिमा पलटकर भूमि को देखती है और कहती है, अरे भूमि बेटा, मेरा एक काम करोगी? जी आंटी जी, कहिए ना। भूमि के पूछने पर अरुणिमा ने कहा, आज रात को महिला संगीत भी है, कुछ औरतें ढोल पर संगीत बजाएंगी, लेकिन ढोल हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ है जो कि महल के पिछले हिस्से में बना हुआ है, तो क्या तुम वहां से जाकर ढोल और संगीत में इस्तेमाल होने वाला सामान निकाल लाओगी? अपने साथ किसी नौकर को ले जाना, अकेले इतना सारा सामान ला नहीं पाओगी। भूमि अपनी जगह पर खड़ी होती है और हामे सर हिलाते हुए कहती है, जी आंटी जी, मैं कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। अरुणिमा मुस्कुराते हुए आस्तिक के साथ अनंत के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते में ही आस्तिक ने अरुणिमा से कहा, काफी समझदार लड़की है, हर चीज को कितने अच्छे से मैनेज कर रही है। आस्तिक की बात सुनकर अरुणिमा इतराते हुए कहती है, पता है, इसीलिए तो इसे अपनी बहू बना रही हूँ। आस्तिक भी अरुणिमा की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भूमि महल के पिछले हिस्से में पहुंचती है। वैसे तो वो अपने साथ किसी नौकर को लाना चाहती थी, लेकिन सारे नौकर किसी ना किसी काम में बिजी थे। भूमि ने सोचा, ढोलक और गाने बजाने का सामान ही तो बाहर लाना है, इसके लिए किसी को क्या परेशान करना, वो खुद ही कर लेगी। लेकिन अब भूमि परेशान हो जाती है, वो महल के पिछले हिस्से तक तो पहुंच गई थी, लेकिन इस भूल भुलैया में इतनी खो गई थी कि उसे स्टोर रूम ही नहीं पता चल रहा था। भूमि इतने सारे दरवाजों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, इनमें से स्टोर रूम कौन सा है? लेकिन तभी भूमि का ध्यान सभी दरवाजों पर जाता है। वो देखती है सभी दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन एक सबसे कोने वाला दरवाजा है जिस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है। भूमि ने कुछ सोचते हुए अपने मन में कहा, क्या ये स्टोर रूम हो सकता है, क्योंकि इस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है, एक बार जाकर देखती हूँ। भूमि धीरे से उस दरवाजे के पास चली जाती है और उसे खोलने लगती है। एक चर की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। भूमि अंदर झांक कर देखती है तो सच में ये स्टोर रूम ही था। भूमि ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा बंद होने के साथ ही स्टोर रूम में जो हल्की सी रोशनी दरवाजे से आ रही थी वो भी बंद हो गई और इस अंधेरे में भूमि को डर लगने लगा। भूमि ने अंधेरा को देखते हुए घबराहट के मारे अपने मन में कहा, हे भगवान, यहाँ पर तो रोशनी भी नहीं है, अंधेरे में ढोलक छोड़ो, मेरा ही तबला बच जाएगा। एक काम करती हूँ, दरवाजा खोल देती हूँ, बाहर से थोड़ी सी रोशनी आएगी तो शायद सामान ढूंढने में आसानी होगी। यही सोचकर भूमि दरवाजे के हैंडल को पकड़ती है और उसे खींचने लगती है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। भूमि ने दो तीन बार उसे जोर लगाकर खींचा, लेकिन वो फिर भी नहीं खुल रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर भूमि पूरी तरह से कांप जाती है।